नमस्कार भारत, 20 अक्टूबर दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। पंजाब के अमृतसर में दशहरा मेले के दौरान हादसा, ट्रैक पर खड़े लोगों पर से गुजरी ट्रेन, 62 मौतों की पुष्टि।
See the number exact, I'll not be able to tell you, as I said earlier, but it is more than 60 to 70।
हादसे के बाद राजनीति, कार्यक्रम में मौजूद रही नवजोत कौर ने उठाए रेलवे पर सवाल, रेल राज्य मंत्री बोले,
ट्रैक के बगल में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना और रेलवे प्रशासन को कोई सूचना नहीं थी, इस कार्यक्रम की सूचना रहती तो हम पहले से इस तरह के निर्देश जारी करते।
और विवेचना में रेहान फजल से सुनिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल याहिया खान की कहानी।
जब ईस्ट पाकिस्तान गिर गया, याहिया खान ने कहा सीज फायर करेंगे, तो नियाजी साहब थे वो कह रहे कि नहीं, आप कंटिन्यू फाइट करें।
बात सऊदी पत्रकार खाशोजी और अफगानिस्तान चुनाव की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को हुई एक बड़ी दुर्घटना के कारण दशहरे का उत्सव मातम में बदल गया। अमृतसर रेलवे स्टेशन से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर जोड़ा फाटक के पास शाम करीब 6:30 बजे रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार लोकल ट्रेन जोड़ा फाटक से गुजरी और ट्रैक के पास खड़े होकर रावण दहन देख रहे बहुत से लोग इस ट्रेन की चपेट में आ गए। अभी तक इस हादसे में 62 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज घटनास्थल का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मृतकों के परिजन को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। सऊदी अरब के सरकारी टीवी ने पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या की पुष्टि कर दी है। सरकारी टीवी ने शुरुआती जांच के हवाले से बताया है कि खाशोजी की तुर्की के इस्तांबुल स्थित वाणिज्यिक दूतावास में हुए एक संघर्ष के बाद मौत हो गई। सऊदी अरब के सरकारी टीवी के मुताबिक इस मामले में डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असीरी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वरिष्ठ सहयोगी साउद अल कथानी को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकारी टीवी ने जानकारी दी कि इस मामले में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये पहला मौका है जब सऊदी अरब की सरकार ने माना है कि पत्रकार जमाल खाशोजी की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने खाशोजी की मौत पर दुख जताया है। अफगानिस्तान सरकार ने दक्षिणी कंधार प्रांत में संसदीय चुनावों को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। ये चुनाव आज ही होने वाले थे। बीते गुरुवार को गवर्नर परिसर के भीतर हुए हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। इस हमले में पुलिस प्रमुख समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति अशरफ गनी के एक प्रवक्ता ने घोषणा करते हुए बताया कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद लिया गया है। गुरुवार को हुए हमले में पुलिस प्रमुख जनरल अब्दुल रजीक और स्थानीय खुफिया प्रमुख की मौत हो गई थी। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के प्रवक्ता डॉक्टर मुजीब रहमान ने बीबीसी को चुनाव को आगे बढ़ाने का कारण देते हुए कहा, अगर कंधार की बात करें तो इस प्रांत में रजीक एक मजबूत स्तंभ के समान थे। उनकी मौत का असर न सिर्फ उम्मीदवारों पर पड़ा है, बल्कि मतदाताओं पर भी इसका गहरा असर हुआ है। चुनाव को 1 सप्ताह आगे इसलिए बढ़ाया गया है ताकि वो रजीक की मौत के सदमे से बाहर आ सकें और सही फैसला ले सकें। लेकिन चरमपंथियों के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये थे डॉक्टर मुजीब रहमान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पश्चिमी यॉर्कशायर के हर्शफील्ड में गुट बनाकर लड़कियों का बलात्कार करने वाले एक गिरोह को अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। इस गिरोह में 20 आदमी थे जो लड़कियों के साथ रेप करते थे। गिरोह में शामिल अधिकांश पुरुष पाकिस्तानी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये गिरोह बीते 7 साल से सक्रिय था। इन्हें 15 लड़कियों से जुड़े 100 से भी अधिक मामलों में दोषी पाया गया है। ये लोग लड़कियों को नशीला पदार्थ पिलाकर उनका रेप करते थे। गिरोह के प्रमुख को ताउम्र जेल की सजा सुनाई गई है, वहीं दूसरों को 5 से 8 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए पूर्व श्रम सलाहकार टॉम बेडविन ने कहा, यदि किसी समुदाय के कुछ लोगों में कोई समस्या है तो हमें यह कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। हर समुदाय में कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के अपराध में शामिल हैं, उन्हें निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। आप सुन रहे थे बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव।
गड्डी आई एकदम गड्डी आई नाल ना गड्डी वा आवाज थी ना कुछ था हैं ऐ दो तीन मुंडे फिर तमाश नहीं करदे ही अपने अपने भाई दी बांह खिच्ची मुरे नु एनु बचाए था जेड़े अपने बंदे ही
चल भाई मेरा बच्चा चल गया जिन मैं बड़ी दुख ना पाला
सर उन्हां ने कहा है कि लेना तो साइड ते पर लोकी खलोते ही पर जे ट्रेन वाले नु चाहिदा हार ना
जाना। बीती शाम खुशियों के एक मेले में मौत दबे पांव चली आई। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर जोड़ा रेल फाटक के करीब एक मेले का आयोजन किया गया था। जहां ये कार्यक्रम हो रहा था वहां पास ही एक रेलवे ट्रैक है। शाम करीब 6:30 बजे जब रावण के पुतले में आग लगाई गई तो कई लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। कई लोग मोबाइल में तस्वीरें खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान एक ट्रेन उसी ट्रैक से गुजरी और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी पूरी रात अमृतसर में पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाते रहे। उनके भेजे ब्यौरे को पेश कर रही हैं भूमिका राय।
जालंधर से अमृतसर आ रही डीएमयू ट्रेन को जोड़ा फाटक क्रॉसिंग पार करने में कुछ ही सेकंड लगे और इतने में खुशियों का एक मेला गम के सैलाब में बदल गया। दशहरे के मौके पर रावण के पुतले को जलते देखने आए जो लोग पास के ही रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए थे उनमें से कई ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अमृतसर के पुलिस कमिश्नर SS श्रीवास्तव ने बताया। कमिश्नर श्रीवास्तव कह रहे थे कि मरने वालों की सही संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन ये संख्या 60 से ज्यादा है। रोते बिलखते लोगों की भीड़ के बीच कई लोग घायलों को उठा रहे थे, कई अपनों को तलाश रहे थे और इस दौरान जो कुछ हुआ उसे बयां कर रहे थे।
ट्रेन आई, ट्रेन ने हॉर्न नहीं दिया, बहुत स्पीड से ट्रेन आई थी, उन्हें बंदे सारे डाये
एकदम। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद अमरनाथ ने बीबीसी को हादसे के आंखों देखे हाल की जानकारी दी।
मैं देखे 25-30 बंदे लेना थले लाइन लग के पे ही सारे ही मेरे हाथ लिबड़े खून धो गया है बार रखा।
अमरनाथ कह रहे थे कि मैंने देखा कि 25-30 लोगों की लाशें बिछ गई हैं। मैंने इन लाशों को दूसरी जगह पहुंचाया, मेरे हाथ पूरे खून से भर गए। हादसे के बाद कई लोग गुस्से में दिखे, वो बद इंतजामी पर सवाल उठा रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद रही पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कई लोगों का आरोप था कि वो हादसे के बाद मौके से चली गई। बाद में डॉक्टर कौर ने सफाई दी और रेलवे को कटघरे में खड़ा किया।
कितने ना कितने जेड़ा भी इवेंट होता है उदी प्रॉपर एक परमिशन लेती जाती है। हर साल इतने इवेंट होता है, एवं पॉलिटिक्स के लिए भी पहला बीजेपी अकाली दल वो भी इतनी करती सी इवेंट। रेलवेज नू जरूर मैं मानती हाँ, जो तो पहला ऑलरेडी जो तो परमिशन होंगी रेलवेज नू दस्या जाता है इतने इवेंट हो रहे हैं, ट्रेन नू बहुत स्लो आना चाहिए।
लेकिन रेल अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हादसे में रेलवे की कोई गलती नहीं है। रेलवे के मुख्य प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया।
देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा एहतियात ये होता है कि हम गाड़ी को लेवल क्रॉसिंग गेट को उसको बंद करें और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि लेवल क्रॉसिंग गेट बंद था और ये यात्री क्योंकि वहां पे उस फंक्शन में हड़कंप मचा है उसको डर के पटाखे की आवाज से ना तो ट्रेन की आवाज शायद उनको ना सुनी हो और वो लोग लेवल क्रॉसिंग गेट की तरफ भागे हैं उस इंसिडेंट में वो उस गाड़ी की चपेट में आए हैं।
देर रात रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने दावा किया कि रेलवे को कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, ये कोई रेलवे ने दुर्घटना तो की नहीं है। अब ट्रैक के बगल में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना और रेलवे प्रशासन को कोई सूचना नहीं थी। इस कार्यक्रम की सूचना रहती तो हम पहले से इस तरह के निर्देश जारी करते।
हादसे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक बयान जारी कर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजन के लिए 5 लाख के मुआवजे और घायलों के मुफ्त इलाज के इंतजाम की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि रेलवे ट्रैक के पास रावण क्यों बनाया गया। प्रशासन को इसे देखना चाहिए था। जब मैं कल वहां जाऊंगा तो इस बारे में जानकारी करूंगा। घायलों को इलाज के लिए जिन अस्पतालों में दाखिल कराया गया था वहां देर रात तक लोगों की भीड़ बनी रही। खून देने वाले और खाना पहुंचाने वाले पहुंचते रहे। पीड़ितों को दिलासा देने आए दर्द की वो कहानियां भी सुनते रहे जो अरसे तक याद रह जाएंगी। भूमिका राय, BBC नई दिल्ली।
हमारे सहयोगी सरबजीत धालीवाल इस वक्त भी हादसे की जगह मौजूद हैं और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हमारे एक और सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन, जो हादसे के बाद वहां सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में थे, वो भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रॉबिन, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हादसे को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। प्रशासन चुप है, क्या स्थिति है, ताजा अपडेट क्या है वहां?
ताजा अपडेट कल के बाद, आज तो सिर्फ यही जितनी डेड बॉडीज 20 के करीब रामदास और गुरु नानक हॉस्पिटल यहाँ पे पड़ी हैं, उनकी अभी शनाख्त होनी बाकी है। एक तो ये है, जितने इंजर्ड हैं, ज्यादातर इंजर्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया है प्राइमरी हेल्थ या प्राइमरी उनकी दवाई दारू देके, लेकिन जो सीरियसली क्रिटिकल इंजर्ड हैं वो अभी हॉस्पिटल में हैं 50 के करीब, और कुछ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफर किया है।
तो अभी जी रॉबिन, कल आपने जैसा हमें जानकारी दी थी कि वहां लोग बड़े नाराज थे, गुस्से में थे, और अभी जानकारी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां पहुंचे हुए हैं जहां अस्पताल में आप मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन वो फ्लाइट से सीधा यहाँ पे आ गए। उन्होंने प्रशासन को किसी को बताया नहीं अपनी विजिट के बारे में, ये सीधा यहाँ पे आए हैं और अभी पेशेंट से मिल रहे हैं वो जाके, और इसके बाद इमीडिएटली वो दूसरे सिविल हॉस्पिटल जाएंगे। कल लोगों में बहुत गुस्सा था वहाँ पे ट्रैक पर, और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत को सिद्धू के खिलाफ उन्होंने जमकर नारे भी लगाए थे। इसमें राजनीति भी गरमाई थी क्योंकि दूसरे दल भी उसको लेके उठा रहे थे ये क्वेश्चन के वहाँ पे नवजोत को सिद्धू ने परमिशन ली या नहीं ली जो उस मेले में शिरकत करने की, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की। उसके अलावा नवजोत को सिद्धू वहाँ से इमीडिएटली चली गई, इस लोगों को इस बात को लेके।
जी रॉबिन, प्रशासन भी इस मामले में अभी तक चुप है। आप अस्पताल में हैं, नजर बनाए रखें। सरबजीत मौके पर मौजूद हैं जहां ये हादसा हुआ था। सरबजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 12 घंटे हो चुके हैं, अभी क्या स्थिति है वहां?
देखिए, जब हम लोग यहां पर देर रात पहुंचे तो हमें वहां पर काफी जो माहौल था गम का, और कुछ लोग 7 से 8 घंटे बाद भी अपनों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि जो उनके अपने थे कुछ, क्योंकि रोशनी का प्रबंध वहां पे सही ना होने के कारण लोग मोबाइल की लाइट से रेलवे ट्रैक के आसपास जो झाड़ियां हैं वहां ढूंढ रहे हैं। और इसमें एक बहुत अहम बात है कि जो रावण का किरदार निभाने वाले थे दलवीर सिंह, वो भी इस हादसे में मारे गए हैं, क्योंकि जो उनके भाई बलवीर सिंह ने हमें बताया कि जैसे ही उन्होंने अपना किरदार खत्म किया और स्टेज पे वहां पे माथा टेका, और माथा टेकने के बाद ही उन्होंने ट्रैक के पास खड़े हो गए, क्योंकि जो स्टेज है वो करीब 20 मीटर दूर है ट्रैक से, और वहीं पे जब वो खड़े थे तो ट्रेन आई और उसने उसे अपनी लपेट में ले लिया। तो लोगों में गुस्सा जरूर है, आक्रोश है, और जिस तरह की वहां पे स्थिति है, काफी भीड़ वाला इलाका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहां पे ये इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, और एक बात सबसे अहम है कि एक ही गेट था उस ग्राउंड में आने वाला, जो धोबी घाट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, एक ही ग्राउंड है, और दूसरा रास्ता जहां पे स्टेज बनाई गई थी उसे स्टेज के जरिए बंद कर दिया गया था।
जी तो सरबजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि साल दर साल वहां ये कार्यक्रम होता है और ये रेलवे ट्रैक वहां से है जैसा आपने खुद भी बताया, क्या इसको लेकर कोई प्रशासन अलर्ट नहीं था अभी तक, इस बारे में कोई जानकारी निकल कर आ रही है?
देखिए, लोगों के गुस्से की वजह एक बात यही है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे थे और सबको पता है कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, और इसके बावजूद भी किसी तरह का वहाँ पे कोई ऐसा सिक्योरिटी का, कोई सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं था। इसी वजह से लोगों में ज्यादा गुस्सा है, नारेबाजी भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लोग अपने परिजनों को लेकर खुद हॉस्पिटल पहुंचे हैं। किसी ने बताया कि वो स्कूटर से लेके गए हैं, कोई जो भी वहां पे चीज मिली उसी से उन्होंने
उसी से वो वहां पहुंचे हैं। सरबजीत, हम अगले कार्यक्रम में भी आपके पास आएंगे, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि सरबजीत और हमारे बाकी दूसरे साथी जो मौके पर देख रहे हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं BBCHindi.com पर आकर। और अब जान लेते हैं कि इस पूरे हादसे को अखबारों ने किस तरह से कवर किया है। बताने के लिए मौजूद हैं भूमिका राय।
जी वात्सल्य, आज की सबसे बड़ी खबर है अमृतसर हादसा, जिसको दैनिक जागरण लिखता है, रावण दहन के दौरान ट्रेन से 10 सेकंड में 61 कटे। और दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, रावण दहन देख रहे 61 लोग ट्रेन से कटे। आंकड़े अखबारों में अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन ज़्यादातर अखबारों ने 60-61 का ही आंकड़ा दिया। अमर उजाला लिखता है, अमृतसर में पटरी पर खड़े हो जलता रावण देख रहे लोगों को रौंद कर गुजर गई ट्रेन। और नव भारत टाइम्स लिखता है, जलता रावण देख रही भीड़ पर चढ़ी ट्रेन। तो सब ने रावण और ट्रेन को जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसे अपने हेडिंग से बताने की कोशिश की। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि सबरीमाला में तीसरे दिन भी महिलाओं को रोका गया है, और ये खबर भी सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर छापी है। दो महिलाएं 500 मीटर की दूरी से लौट आई हैं। इसके अलावा मी टू, क्योंकि अभी अभियान चल रहा है तो उससे जुड़ी एक खबर मैं आपको बताऊं कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सेलिब्रिटी मैनेजमेंट फर्म के सह संस्थापक अनिर्बन बाला ने आत्महत्या की कोशिश की थी। तो ये एक बड़ी एक खबर है जिसको हाईकोर्ट ने भी कहा है इस पे कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो मीटू अभियान का। इसके तहत वही महिलाएं आगे आएं जिनके साथ वाकई कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं।
बहुत शुक्रिया भूमिका अखबारों की जानकारी देने के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
सुप्रीम कोर्ट ने हर उम्र की महिलाओं के लिए सबरीमला मंदिर के द्वार खोले, लेकिन पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कर रही हैं इसका विरोध। क्या ऐसा करके महिलाएं स्वयं अपना अहित नहीं कर रही हैं? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। इस शनिवार 20 अक्टूबर को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी लें आज शाम बीबीसी इंडिया बोल में हिस्सा। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। सऊदी अरब ने करीब 2 हफ्ते इनकार करने के बाद आखिरकार मान लिया है कि पत्रकार जमाल खाशोजी की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इस खबर की पुष्ट होने के बाद दुख जाहिर किया है। ताजा घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता सरप्रिया सांगवान। जी सरप्रिया,
सऊदी अरब के सरकारी टीवी ने शुरुआती जांच के हवाले से बताया है कि खाशोजी की तुर्की के इस्तांबुल स्थित वाणिज्यिक दूतावास में एक संघर्ष के बाद मौत हो गई। सऊदी अरब के सरकारी टीवी के मुताबिक इस मामले में डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल असीरी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वरिष्ठ सहयोगी साउद अल कथानी को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकारी टीवी ने यह भी जानकारी दी है कि इस मामले में जारी जांच के दौरान सऊदी अरब के 18 नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। ये पहला मौका है जब सऊदी अरब की सरकार ने माना है कि पत्रकार जमाल खाशोजी की मौत हो चुकी है। खाशोजी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आलोचक माना जाता था। खाशोजी बीते एक साल से अमेरिका में रह रहे थे और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे। अमेरिका ने भी खाशोजी की मौत पर दुख जताया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जांच पर नजर रखेगा।
जी बहुत शुक्रिया सरप्रिया सांगवान अपडेट के लिए। और अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में आज संसदीय चुनाव के लिए मतदान होना है। ये चुनाव तय वक्त से करीब 3.5 साल बाद हो रहे हैं। तालिबान के सत्ता से हटने के बाद ये तीसरे संसदीय चुनाव है। बीबीसी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल अफगानिस्तान में है। हमारी सहयोगी सरोज सिंह ने उनसे चुनाव को लेकर बात की।
कंधार के जो पुलिस प्रमुख हैं जनरल अब्दुल रजीक, उनकी हत्या कर दी गई। ये अफगान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है चुनावों के ठीक पहले, क्योंकि जनरल रजाक जो थे वो पूरे अफगानिस्तान में बहुत ही प्रभावशाली सुरक्षा अफसर की तरह देखे जाते थे। उन्होंने तालिबान के खिलाफ काफी कार्रवाई की और उनकी हत्या के बाद माहौल काफी दुख का तो है, लेकिन फिलहाल कल चुनाव होंगे, लेकिन कंधार में चुनाव टाल दिए गए हैं एक हफ्ते के लिए।
ये जानना चाहते हैं कि मुख्य मुकाबला वहाँ किन किन के बीच में है।
देखिए, ये जो चुनाव है ये संसदीय चुनाव है, तो संसद में 249 सीटें हैं, उनमें उसके लिए 2500 से भी ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनमें से 400 से ज्यादा महिलाएं हैं। इनमें खास बात ये, इन 2500 उम्मीदवारों में खास बात यह है कि इस बार कई युवा उम्मीदवार सामने आए हैं। इनमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ व्यवसायी हैं, कुछ पुराने सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो चुनौतियां हैं इस चुनाव में, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद इस तरह के युवा उम्मीदवारों का खड़े होना एक नई उम्मीद की किरण अफगान लोगों के लिए है। और कई लोगों का मानना है कि अगर इनमें से कई युवा उम्मीदवार चुने गए तो वो देश को एक अहम दिशा में ले जाने की कोशिश करें।
प्रतीक्षा, ये जानना चाहते हैं कि लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इन चुनावों को लेकर।
देखिए, बीबीसी ने काफी लोगों से बात की है। एक इतने सालों के बाद ये तीसरे संसदीय चुनाव है, लेकिन चुनाव काफी लोग हैं जो थक चुके हैं पूरी प्रक्रिया से और उनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये चुनाव कुछ बदलेगा उनके लिए। उनको लगता है कि आम आदमी के लिए अभी भी कुछ नहीं बदला है।
ये थी बीबीसी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल और वक्त विवेचना का। बीते दिनों भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में विशेष सचिव रहे तिलक देवेशर की किताब आई थी, पाकिस्तान एट द हेल्म। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के शासकों से और उनके जीवन पर नजर डाली है। बीते हफ्ते आपने मोहम्मद अली जिन्ना पर विवेचना सुनी, इस बार रेहान फजल बात कर रहे हैं जनरल याहिया खान की।
Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return.
भारत द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां दोनों देशों को ऐसे मोड़ पर ले जा रही हैं जहां से वापस नहीं आया जा सकता। मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम अपनी पूरी ताकत से अपने सम्मान और सीमाओं की रक्षा करेंगे। ये आवाज है पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति याहिया खान की, जो 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई से कुछ दिन पहले देश को संबोधित कर रहे थे। 3 दिसंबर 1971 की दोपहर को जैसे ही जनरल याहिया खान अपनी जीप से एयरफोर्स हेडक्वार्टर जाने के लिए अपने निवास स्थान से चले, एक बहुत बड़ा गिद्ध उनके सामने आकर बैठ गया। याहिया के बगल में बैठे जनरल हमीद ने धीरे धीरे जीप बढ़ानी शुरू की, लेकिन गिद्ध ने हिलने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने हॉर्न बजाया, लेकिन गिद्ध ने उतनी ही हिकारत से उन्हें घूरा। याहिया ने भी जीप से कूदकर अपने बेंत से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन गिद्ध टस से मस नहीं हुआ। माजरा देखकर पास काम कर रहा माली दौड़ता हुआ आया और उसने बहुत मुश्किल से अपने फावड़े से गिद्ध को याहिया के रास्ते से अलग किया। बाद में याहिया खान के एडीसी अरशद समी खान ने अपनी आत्मकथा 3 Presidents and an Aide में लिखा,
मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन 3 दिसंबर 1971 की दोपहर का वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने कौंध जाता है, जब एक गिद्ध ने जनरल याहिया खां की जीप का रास्ता रोक लिया था। मानो कोई ऊपरी ताकत हमें बताने की कोशिश कर रही हो कि युद्ध पर जाने का फैसला सही फैसला नहीं है।
याहिया शराब पीने के लिए इतने बदनाम थे कि सैनिक कमांडरों को आदेश दिए गए थे कि वो याहिया के किसी मौखिक आदेश का पालन न करें जो रात 8:30 बजे के बाद दिए गए हों।
सबको मालूम था कि याहिया 8 बजे के बाद रोज वो अपनी शराब पीना शुरू कर देते हैं और 10 बजे तक पता नहीं चलता वो क्या कह रहे हैं। तब मिलिट्री गवर्नर्स जो प्रोविंसेस के थे उनका वार्न किया था अमित ने कि भाई आप ये फॉलो मत करना, रात को सुबह फोन करना याहिया खान को और उनसे कंफर्म करना कि सर आपने रात को ये कहा था, ये करना है या नहीं करना है, और तभी उसको इंप्लीमेंट करना। तो ये देखिए, मिलिट्री चेन ऑफ कमांड में आपका प्रेसिडेंट एक आपको हुक्म दे रहा है और उसके ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हुक्म नहीं मानो, क्योंकि पता नहीं किस हालत में हुक्म आपने दिया है।
याहिया खान को लेडीज मैन कहा जाता था। कई महिलाओं के साथ उनकी दोस्ती थी। उनकी सबसे नज़दीकी महिला दोस्त थी अकलीम अख्तर, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर थी। मलकाए तरन्नुम नूरजहां को याहिया नूरी कहकर पुकारते थे, वो भी याहिया को सरकार कहकर बुलाती थी। महिलाओं के साथ उनके संबंधों की वजह से एक बार बहुत बड़ी प्रोटोकॉल समस्या उठ खड़ी हुई थी। एक जमाने में पाकिस्तान में बीबीसी के संवाददाता रहे ओवन बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं,
एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे थे। जब उनके लौटने का समय आया तो उन्हें देर होने लगी, क्योंकि याहिया अपने शयन कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। आखिरकार उनकी नज़दीकी दोस्त जनरल रानी को मनाया गया कि वो उनके बेडरूम में जाकर उन्हें बाहर लाएं। जब वो अंदर घुसी तो उन्होंने याहिया खान को अपने बिस्तर पर पाकिस्तान की सबसे मशहूर गायिका के साथ पाया।
13 दिसंबर 1971 तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह पिछड़ रहा है। जब चीन से मदद की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो याहिया ने मजबूरन रिचर्ड निक्सन को फोन मिलाया। अरशद समी खां अपनी किताब में लिखते हैं,
याहिया ने जब निक्सन को फोन किया तो वो किसी मीटिंग में थे। 13 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे राष्ट्रपति भवन के टेलीफोन ऑपरेटर ने मुझे फोन किया कि राष्ट्रपति निक्सन लाइन पर हैं। मैंने इंटरकॉम से फोन कर याहिया को जगाया। नींद में चूर याहिया ने फोन उठाया। लाइन बहुत खराब थी, इसलिए याहिया ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी लाइन पर सारी बातें सुनूं और अगर लाइन टूट जाए तो निक्सन से बात करना जारी रखूं। निक्सन की बातों का लबोलुआब था कि वो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं और उन्होंने इसकी मदद के लिए 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया है। जैसे ही निक्सन ने फोन रखा, याहिया ने मुझसे कहा कि मैं जनरल हमीद को तुरंत फोन लगाऊं। जैसे ही हमीद ने फोन उठाया, याहिया लगभग चिल्लाते हुए बोले, हैम, वी हैव डन इट, अमेरिकन्स आर ऑन देयर वे।
अमरीकी बेड़ा अगले दिन तो दूर ढाका के गिरने तक बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचा। इस हार के लिए याहिया की थ्योरी पूर्व की रक्षा पश्चिम से होगी को जिम्मेदार ठहराया गया।
ये एक्चुअली अयूब खान की डिफेंस स्ट्रेटजी थी। उनका मानना था कि देखिए, हमारी जो फौज है लिमिटेड है, अगर हम फौज को बांट देते हैं थोड़ी वेस्ट पाकिस्तान में और थोड़ी ईस्ट पाकिस्तान में, तो इससे तो इंडिया हमें पूरा वॉक ओवर कर जाएगा, इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वेस्ट पे, और अगर ईस्ट पे कभी अटैक होगा तो हम वेस्ट से इंडिया पे काउंटर अटैक करेंगे। जब ईस्ट पाकिस्तान गिर गया, याहिया खान ने कहा सीज फायर करेंगे, तो नियाजी साहब थे वो कह रहे कि नहीं, आप कंटिन्यू फाइट करें। उसने कहा नहीं, वेस्ट पाकिस्तान को खतरा है। तो सारी जो पॉलिसी थी वो अपने सिर पे खत्म हो गई कि डिफेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ले इन द ईस्ट।
कई साल पहले जब मैंने जनरल नियाजी से संपर्क किया था तो उन्होंने भी हार का ठीकरा जनरल याहिया के सिर पर फोड़ा था।
अल्लाह गारत करे याहिया को और वेस्ट पाकिस्तान वालों को के जीती बाजी हार दी, के शिकस्त मगरब में थी और लानत हम पर पड़ी। मैं जब लड़ रहा था, मैंने 13 तारीख को हुक्म दिया, आखिरी गोली आखिरी आदमी, आखिरी गोली आखिरी आदमी फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मगरबी पाकिस्तान वालों को ख्याल हुआ कि ये तो लड़ाई लंबी होगी, और मशरक पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे ताकि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर, तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरक पाकिस्तान देना पड़ा।
दिलचस्प बात यह है कि इस हार की खबर पाकिस्तानी लोगों को ऑल इंडिया रेडियो से मिली। याहिया ने देश को संबोधित जरूर किया, लेकिन उसमें हार का कोई जिक्र नहीं था।
इतनी बड़ी जंग में किसी एक महाज पर वक्ती तौर पर पीछे हटने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। इस जंग में जो हमारी कौमी बका की जंग है, आखिरी फतह हमारी ही होगी इंशाल्लाह।
पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमेशा झूठ पर मंगनी है। 65 में भी और 71 में लोगों को बताया गया था कि पाकिस्तानी फोर्सेस जमीन पे, आसमान पे और समुद्र पे फतेह पर फतेह पा रही हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और ये 15 दिसंबर तक ये कहानी थी। जब वो सरेंडर करने लगे तो अब लोगों को क्या बताया जाए, तो पहले तो उन्होंने बताया ही नहीं। ऑल इंडिया रेडियो से पहले न्यूज आई, फिर पाकिस्तान टीवी और रेडियो ने ये बनाया गया कि दोनों जो लोकल कमांडर्स हैं उन्होंने आपस में तय करके एक सीज फायर कर लिया है, फिर भी लोगों को नहीं बता रहे थे। और फिर भी याहिया खान ने उड़ के बोले कि वी विल कंटिन्यू फाइटिंग, हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना की अगली कड़ी में बात होगी जनरल जियाउल हक की। आज की कड़ी पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। और चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के ये मान लेने को एक अच्छा कदम बताया है कि पत्रकार जमाल खाशोजी की मौत उसके दूतावास में हुई। फेसबुक ने ब्रिटेन के पूर्व उप प्रधानमंत्री निक क्लेग को वैश्विक मामलों और संचार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। मैसेडोनिया का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया करने को लेकर मैसेडोनिया की संसद ने संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान सरकार ने दक्षिणी कंधार प्रांत में संसदीय चुनावों को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। ये चुनाव आज ही होने वाले थे, लेकिन गुरुवार को हुए हमले के बाद इसे 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक अमृतसर हादसे समेत तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।